ओम शांति। आज का ट्रैफिक क्लास है 13 अप्रैल 1968। अभी बच्चों के 2 क्लास होते हैं, ये अच्छा है। एक याद किया था जिससे पाप कटते जाएंगे और आत्मा पवित्र बनती जाएगी। दूसरा क्लास फिर होता है ज्ञान का, और ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं। ये मेला है बाप और बच्चों का, और तुम्हारे सेंटर में मेला लगता है बच्चों का आपस में। तो कहेंगे कि यहाँ बच्चे सन्मुख आए हैं मिलने के लिए, बल याद करते हैं, परंतु तुम सन्मुख में देखते हो। गायन भी है, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बातचीत करूं, खेलूं, प्रैक्टिकल सम्मुख की गायन है या सिर्फ बोलने की बात है। बाप ने समझाया है कि बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क रहता है। ख्याल करो इस बाबा का क्या पार्ट है और रथ का क्या पार्ट है। क्या बाबा रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, ऐसे नहीं कि तुम्ही से खाऊं। क्यों? क्योंकि वो खुद तो खाते नहीं है। बच्चों के साथ खेलना कूदना वो तो खुद करते रहते हैं। जैसे कि दोनों खेलते हैं और करते तो सभी कुछ यहाँ ही है तुम्हारे साथ, क्योंकि सुप्रीम टीचर भी है। तो टीचर का काम है बच्चों को बहलाना। वो इंडोर गेम भी होती है ना। आजकल तो गेम्स भी बहुत प्रकार के निकल गए, भिन्न भिन्न प्रकार के, सभी से नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल। जिसका वर्णन महाभारत में भी आया हुआ है, परंतु वह चौपड़ का खेल वहां जुआ के रूप में दिखाया। जुआ खेलने वालों को पकड़ते हैं, एक जुआ होती है गवर्नमेंट की पास की हुई, जैसे कि रेस है, उसमें भी बहुत दिवाला मारते हैं। अभी ये भी भक्ति मार्ग से उल्टी रस्म निकली है, पैसे से खेलना उसे जुआ कहते हैं, और उनको बंद भी नहीं कर सकते। क्योंकि गवर्नमेंट की भी है अल्लाह फुल। बाहर में जो खेलेंगे उनको जुआ का रूप देंगे, क्लब में खेलेंगे तो उनको जुआ का रूप नहीं देंगे। ऐसी बहुत क्लबें हैं जहां हजारों की जुआ होती है, नेपाल में जुए के 3 दिन मुकर्रर होते हैं, खास ऐलान निकलता है जुआ ही जुआ, राजे रजवाड़े सभी जुआ खेलते हैं। अब ये जुआ आया कहां से? महाभारत से। दिखाते हैं जुए में दांव पर लगाया, स्त्री का दांव सच सच में लगाए देते हैं। ये बाबा तो अनुभव से सुनाते हैं, कहते हैं तुम जीतो तो हमारी स्त्री तुम्हारे पास, अगर हमने जीता तो तुम्हारी स्त्री हमारे पास। ये सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं, जिनको भक्ति मार्ग की पुस्तक कहा जाता है उनसे ये बातें बैठ निकाली है। मनुष्यों को तो कुछ पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के ये सभी झूठा मार्ग है, और झूठ ही झूठ है। पूजा भी करते हैं वो भी झूठी। सच्ची पूजा तो तब हो जब जिसकी पूजा करते हैं उसको जानते हो, नहीं तो पूजा भी झूठ ही झूठ हो जाती है। जिसको अंधश्रद्धा ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, अभी ये तो तुम ही सुनते हो, साधु संता के कभी नहीं कहेंगे कि ये ब्लाइंड फेथ है। गाया भी जाता है अंधे की औलाद अंधे, भक्ति मार्ग में है ही अंधश्रद्धा। व्रत नियम आदि सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं। सात सात रोज निर्जल रखते हैं, खाना भी नहीं खाते। अब इसको तो हठ कहेंगे ना, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती है। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकालिक के लिए होती है। यहां तो तुम बच्चों को सभी कुछ समझाया जाता है। भक्ति मार्ग को कहा जाता है धक्का खाने का मार्ग, और ज्ञान मार्ग है ठिकाने लगने का मार्ग, सुख का मार्ग। तुम जान गए हो हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में भी याद करना है एक को। भक्ति मार्ग में भी एक की पूजा अभिविचारी पूजा कही जाती है, वो अभिविचारी पूजा फिर भी अच्छी है। हर चीज सतो रजो तमो तो होती ही है। भक्ति में भी पहले सतो रजो फिर तमो गुण होते हैं। सबसे ऊंचे से ऊंचा गुण है सत्वगुणी, शिव बाबा की भक्ति। शिव जो बाबा ही आकर के सुखधाम बच्चों को ले जाते हैं, परंतु उस बाप को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते हैं। सब आसन के हो गए हैं, रचयिता बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, तो आर्फन ठहरे ना। इनको कहा जाता है आर्फनों की दुनिया। आर्फन उनको कहा जाता है जो बाप को ही नहीं जानते, ये तो बाप समझ कर भी पत्थर ठिककर भीतर में कुत्ते बिल्ली में ठोक देते हैं, कितनी ग्लानी करते हैं। कहते भी हैं यदा यदा धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूं, परंतु फिर उसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। समझते हैं संभवामी योगे योगे हरियुग में आते, भगवान वाच तुमने हमारी बहुत ग्लानी की है, सबसे जास्ती मेरी ग्लानी की है। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते हैं, पालना करते हैं, पावन बनाते हैं, उनको पुकारते भी हैं फिर कहते हैं ठिककर बिस्तर में। इसको कच्ची गाली कहा जाता है। एक दो को कहते भी हैं उल्लू का बच्चा, या तो कहेंगे तुम्हारी बुद्धि तो जैसे ठिककर बिस्तर हो गई, भल कितने भी साहूकार हैं, परंतु ये सब ही अल्पकाल के लिए, और ये तो साफ खलास हुए पड़े। तुम बच्चों को तो बेहद के बाप के द्वारा बेहद का राजभाग मिल जाता है। तेरह अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। अभी फिर तुमको राजभाग मिलना जरूर है। तुम ज्ञान को अलग और भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है ये तुम बच्चे भी नम्रवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, इसलिए पत्रे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए। तुम्हारा तो सभी कुछ सत्य है और बाकी तो सभी कुछ झूठ ही झूठ है। सत्य और झूठ बिल्कुल अलग है, इसलिए तुम पर्चों में छपाते हो। ये तो प्रश्न बने हुए हैं, उन प्रश्नोत्तरी से पूरी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों के लिए सेवा तो बहुत है। अभी ये देखो ये बैज ही कितना अच्छा है। सबसे बड़े से बड़ा शास्त्र है ये बैज, और अभी ये है ज्ञान की बात, क्योंकि इसमें बैठ समझाना पड़ता है। वो याद की यात्रा तो अलग है, उस याद की यात्रा को कहा जाता है जपा जाप। इसमें जपना करना कुछ नहीं है मुख से, अपना तो कुछ भी माला आदि नहीं है, अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये तो जानते हो शिव बाबा बाप है, हम आत्मा है, उनकी संतान है, और वही बाप सन्मुख आकर के कहते हैं, हे बच्चों मैं ही पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने के लिए। तो देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ अपन को आत्मा समझ मुझे अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। मेरा ही पार्ट है पतितों को पावन बनाने का, और कोई भी ये पार्ट नहीं बजा सकता। ये है बुद्धि का योग अथवा बुद्धि का संग बाप के साथ। संग से रंग लगता है ना, कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर बाद में उतरना शुरू कर देते हो। इनके लिए कहा जाता है सत्य का संग तारे, परंतु इसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। अब सत्य तो सिर्फ एक ही बाप है, ये तो सारी दुनिया में झूठ ही झूठ है। तुम समझते भी हो, हमारी आत्मा भी पतित है। वो पावन के साथ बुद्ध का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। सोना सच्चा बने तो जेवर भी सच्चा बने। तो ये है याद की यात्रा। योगाग्नि है जिससे विकर्म भस्म हो जाते हैं, आत्मा की खाद ही निकल जाती है। तुम जानते हो सत्य हुआ नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, वहां 16 कला संपूर्ण थे। अभी कलयुग में देखो कोई कला नहीं रही। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। सारी दुनिया पर खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तब तो भी काले हो गए हैं। जो कुछ भी तुम इन आंखों से देखते हो वो सब काला ही काला हो गया, सब तमो प्रधान। लक्ष्मी नारायण राम सीता इनकी आत्माएं भी काली हो गई। ये था राजा रानी तथा प्रजा सब श्याम बन गए, परंतु श्याम सुंदर का भी अर्थ कोई नहीं जानते। कितने नाम मनुष्यों ने रख दिए हैं, अभी बाप ने आकर के अर्थ समझाया है। कि पहले होते हैं श्याम, फिर श्याम तन से पुरुषार्थ करते हैं बाप को याद करने का। याद करते करते आत्मा पवित्र बनती है तो तन भी पावन बन जाता है। आत्मा और शरीर दोनों का पावन बनने से फिर सुंदर कहा जाता है। तुम ही पहले सुंदर थे फिर अभी श्याम बने हो। ज्ञान शिक्षा पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो, अभी फिर भी तुमको यह बनना है। श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। उनका अर्थ भी बाप ने तुम आत्माओं को समझाया है। वो भक्ति मार्ग वाले तो इसका अर्थ ही नहीं समझते। हम आत्मा एक बाप को ही याद करते हैं, बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं, इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। तो देखने के लिए इनसाइट चाहिए, देखना व न देखना ये तो समझने की बातें हैं। आत्माओं को समझाना है मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है, हम यहां शरीर में आकर के पार्ट बजाते हैं। पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार, आत्मा तो सभी है, कोई में कितना पार्ट भरा हुआ है कोई में कितना, तो ये बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं कैसे पार्ट बजाते हैं ये बातें तुम ही जानते हो। पहले देवी देवता धर्म का ग्रहण और ये नॉलेज भी तुमको अभी है। इस सब पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ये नॉलेज मिलती है, बाद में कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, किसको भी पता नहीं है देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। हाँ चित्र तो है, वो कब हुए उनका राज्य कब स्थापन हुआ, परंतु ये किसी को पता नहीं। तुम बच्चों को तो पता है, जब तुम औरों को भी आप समान बनाते हो बहुत आप समान बन जाएंगे। जब बहुत बन जाएंगे तो जरूर मकान भी बड़ा बनाना पड़ेगा। ये पोजीशन की बात है, अशक्ति। अड़सठ में तो एक ही हाल था, माउंट आबू और वो भी इस हाल के ज्यादा से ज्यादा दो गुना तीन गुना। अड़सठ के बाद अब कितने हाल बन गए, मकान भी बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे और लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। जरूर कोई युक्ति निकलेगी, बहुत बड़ी हाल की बाबा को तो दरकार नहीं है। बहुत दूर भी बाबा की आवाज जाकर सुन सकते हैं, इसमें रड़ियां भी नहीं मारनी होती हैं। जैसे कलप पहले जो एक्ट थी वो ही फिर होगी। ये समझ में आता है, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे तो बच्चों के लिए बहुत मकान बनाना पड़ेगा। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हाल बनाते हैं उनको भी समझाओ। यहां भी देखो शादी के लिए धर्मशालाएं बना रहे हैं, कोई अपने कुल के लिए होंगे तो जट समझ जाते हैं, अपने कुल के नहीं होंगे तो उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। जो इस कुल के नहीं होंगे वो बिगन डालेंगे। क्या पहचान बताई, अपने कुल वालों की और पराये कुल वालों की क्या पहचान बताई।
अपने कुल के नहीं होंगे वो बिगन
डालेंगे, अपने कुल के नहीं होंगे तो बिगन डालेंगे समझेंगे नहीं, और अपने कुल के होंगे तो झट समझ जाएंगे। जो स्कूल के होंगे वो मानेंगे। सत्य ज्ञान है, आप सत्य कहते हैं। तीन चार और सबकी वाणी का तीसरा पेज मानेंगे कि ये हाल आदि जो हम बनाते हैं शादी के लिए, ये तो हम खून करने का प्रबंध कर देते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वो फिर लड़ने लग पड़ेंगे, कहेंगे ये तो रस्म चली आ रही है, वो ये जानते ही नहीं है कि प्रवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग भी था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बन पड़ा है, अभी फिर बाप आए हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए। ट्रस्टियों का भी झगड़ा चल पड़ता है, कोई कहेंगे देना चाहिए, कोई कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं, और तुम्हारा तो धंधा ही झगड़े का है, क्योंकि तुम शुरुआत से ही प्योरिटी पर जोर देते हो। इस बात के ऊपर कितनी बिघन पड़ती है, अब देखो मुसलमानों का आगा खान है, कितना उनका मान है, क्रिश्चियंस में पोप का भी कितना मान है। अब तुम तो जानते हो पोप क्या करते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में शादियां कराते रहते हैं, बहुत शादियां होती हैं, पोप आकर के हथियाला बांधते हैं। इस बात पर वो लोग इज्जत समझते हैं, तुम तो कहेंगे ये तो खून ही नाहक धंधा करते हैं। बड़े बड़े महात्माओं को शादी पर मंगाते हैं, आजकल महात्मा लोग सगाई भी कराते हैं, बाप तो कहते हैं ये काम महाशत्रु है, परंतु ये आर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है, कोर्स खाना बंद करना समझाना है, और इसे समझाने की बड़ी भारी युक्ति चाहिए। आगे चल करके आस्ते आस्ते समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको पकड़ो, वो झट समझ जाएंगे कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, हिंदू धर्म तो नहीं था। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो वैसे और भी समझ करके वृद्धि को पाते रहेंगे। तुम बच्चों को तो ये बात का भी पक्का निश्चय है, ये कलम लग जाएगा, कलम लगते लगते ताकि आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार तुम बाप की श्रीमत पर ये देवता धर्म बनाते हो, और ये देवताएं हैं नई दुनिया में रहने वाले, पहले तुमको ये थोड़े ही मालूम था कि बाप हमको ट्रांसफर करेंगे आकर के संगम युग पर, जरा भी पता नहीं था। अभी तो तुम समझते हो सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है, अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। तो हर एक को अपने दिल से पूछ रहे हैं, स्कूल में जब सब्जेक्ट्स में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं नापास हो जाएंगे। ये भी स्कूल है, ये गीता पाठशाला तो मशहूर है। फिर उनका नाम थोड़ा फिराए दिया है, तुम लिखते हो सच्ची सच्ची गीता पाठशाला, तो लिखने से ही साबित हो जाता है उनकी है झूठी। परंतु इन बातों को खोलकर समझाएंगे तो वो बिगड़ेंगे, खिटपिट जरूर होगी, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पहले भी कितने बिघन डाले थे, आग लगा देते थे, आजकल तो ये सब करते ही रहते हैं, जैसे कि फैशन पड़ गया है, बसों को जलाना, आग लगाना, ये सब कहां से सीखे हैं? बापूजी ने सिखाया है, अब जिसने जो सिखाया वो ही सीख गए, आगे से भी जास्ती सीख गए। अभी देखो कैसी पिकेटिंग आदि करते रहते हैं, गवर्नमेंट को भी घाटा पड़ जाता है, गवर्नमेंट को घाटा पड़ता है तो हर वर्ष टैक्स आदि बढ़ाती जाती है। एक दिन ऐसा भी आवेगा जो बैंक के लाकर आदि भी खुलवा लेंगे, सबके अनाज आदि की कोटों की भी जांच करते हैं, कहां जाती तो नहीं रखा है। इन सभी बातों से तुम बच्चे तो छूट गए हो, तुम्हारे लिए तो है मुखी आदि की यात्रा। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना, ताकि तुम्हारे सारा दुख दूर हो जावे। इस समय तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है, इसी जन्म के कर्मों का हिसाब किताब नहीं, 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। तो हिसाब किताब चुकतू करने में डरना नहीं है, कितना टाइम हो गया हिसाब किताब ही चुकतू नहीं होता है। कोई बीमार पड़ते हैं तो बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है, तुम हॉस्पिटल में भी जाकर के ये नालिश दो, बताओ कि 21 जन्मों के लिए कब रोगी नहीं बनेगी। दुख में तो सभी भगवान को याद करते हैं, तो अभी एक बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जावेंगे। सिर्फ इस जन्म की विकर्म की बात नहीं है, बाप तो भविष्य 21 जन्मों के लिए गारंटी करते हैं, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाप को याद करने से आयु भी तुम्हारी बढ़ेगी। भारत की आयु बहुत बड़ी थी, निरोगी थे, तभी बाप तो बच्चों को श्रीमत देते हैं, श्रीमत देते ही है श्रेष्ठ बनाने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भूलो ही नहीं, कल्प कल्प तुम ही बनते हो, ऐसे से भी और कोई कह नहीं सकता। तो ऐसी ऐसी सर्विस तुम बहुत कर सकते हो, कोई भी समय लेकर के टाइम ले सकते हो। जो नौकरी करने वाले हैं वो बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद के सर्जन के हम बने हुए हैं, जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। तुम जाकर के हेल्थ मिनिस्टर आदि को भी समझाओ कि देखो तुम हेल्थ के लिए इतना माथा मारते हो, सत्युग में तो बहुत आबादी कम होती है, वहां शांति सुख पवित्रता आदि सब होती है। सारी दुनिया में तुम ही सभी का कल्याण करने वाले हो, तुम सब पंडे हो ना, पंडे की औलाद पांडव संप्रदाय। किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा पांडव कौन थे। तुम जाकर के ये बातें फूड मिनिस्टर को भी समझा सकते हो। पहले पहले सबसे बड़े से बड़ा तो भारत है, पहले कितना सॉल्वेंट था अब कितना इंसॉल्वेंट बन गया है। ये पुराना देश है, गरीब देख करके उनको कितनी मदद करते हैं। जो अकल वाले हैं वो आकर के उनको सिखलाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे तो संगम युग पर हो, तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र बैठा हुआ है। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग, बनता है।
दिल में धारण करने की बात है, कोई प्रैक्टिकल में नहीं बन जाता है। जम दे जान दे हथेली पर आम नहीं उगाया जाता है। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है। और ज्ञान अमीर बनाते हैं। भक्ति रावण से आती है, ज्ञान एक बाप से आता है, राम से आता है। बाप आकर दिन बनाते हैं और रावण रात बनाए देते हैं। और ये दिन भी बेहद का है और रात भी बेहद की है। और फकीर और अमीर बनना ये भी बेहद की बातें हैं ना। बताने वाला भी बेहद का बाप है। अभी सभी पापात्माओं को पावन बनाने की बैटरी एक ही है। ऐसे चिटके तुम याद रखो और सदैव खुशी में रहो। बाप कहते हैं बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो फिर शाम को फकीर बन जाते हो। और बार बार ये क्रम चलता है। बाप आकर अमीर बनाते हैं और रावण फकीर बनाए देता है। तो ऐसे बनते हो वो भी युक्ति बताते हैं। पतित फकीर से तुम पावन अमीर बनते हो। पतित से पावन फकीर से अमीर बनने के लिए बात एक ही है। मन बना भव फिर है मध्याजी भव। मन बना भव मन मेरे मन में संकल्प समाया हुआ है वो संकल्प तेरे मन में भी समा जाए। और उसके बाद मध्याजी भव वो कुछ भी तू कर्म कर यजन कर है वो सारे कर्म मेरे लिए अर्पण कर। ये भी बच्चे जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस युग में पुरुष माने आत्माए आत्माओं के बीच में जो भी उत्तम के उत्तम पाठधारी आत्माएं हैं वो सब प्रत्यक्ष होती है। तुम जो भी यहां बैठे हो निश्चय है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे। और बनेंगे भी नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि एक जैसा पुरुषार्थ कोई का है नहीं। स्कूल में ऐसे होता है ना नंबर वन क्लास ट्रांसफर होता है। ये भी स्कूल है यहाँ भी नंबर वन क्लास ट्रांसफर होता है। क्या मतलब पहले बेसिक नॉलेज में आते हैं प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ते हैं फिर ट्रांसफर होता है। एक साथ ट्रांसफर होता है या एक ही करके ट्रांसफर होता है। धीरे धीरे ट्रांसफर होते रहते हैं। इम्तिहान पूरा होता है तो जरूर दूसरे क्लास में नंबर बाद जाकर बैठती। क्लास ट्रांसफर होता है तो स्थान भी बदल जाता है टीचर्स भी बदल जाते हैं। वो है हद की पढ़ाई की बात है और ये है बेहद की पढ़ाई की बात। नंबर बार रुद्रमाला में तुम जाते हो क्लास ट्रांसफर होना माना रुद्रमाला में जाना। ये ध्यान का ज्ञान है। बीज तो एक ही है और झाड़ का ही बीज है, मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये भी बच्चे जानते हैं झाड़ पृथ्वी को कैसे पाता है, फिर पुराना कैसे होता है, आगे तुम नहीं जानते थे। अभी बाप ने आकर के हमको समझाया, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, देवी गुण भी धारण करने हैं, इस पर कथाएं भी हैं, दूसरे का खम्भ निकाल कर अपने में डाला, वास्तव में ये खम्भ है दैवी गुणों का, और कोई चीज डालने की नहीं है, तो अपने ऊपर ध्यान देना है, याद की आपका सही पवित्र बनेंगे, और कोई तो उपाय नहीं। आप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उनसे पूरा युग लगाना है, उनकी बैटरी कब ढीली नहीं होती है, सर्वशक्तिमान है तो जरूर पावरफुल बैटरी है, और क्या पहचान है, औरों की बैटरी सतो रजो तमो में आती है, बाप की बैटरी सतो रजो तमो में नहीं आती है, क्योंकि उनकी तो सदा ही कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे बार बार कर्म बंधन में आ जाते हो, कर्म बंधन में आ जाते हो तो अटैचमेंट में आ जाते हो, इतने कड़े बंधन लग जाते हैं। बाबा के पास तो सभी समाचार आते रहते हैं, बेचारी बांधेरिया कितना मार खाती है, तो बाप कहते हैं सिवाय याद की यात्रा, और सिवाय बाप के ज्ञान की और कोई उपाय नहीं है, ये ज्ञान भी हड्डियां नरम करता है। यूं तो भक्ति भी नरम बनाती है, कहेंगे ये बेचारा भक्त आदमी है, इसमें ठगी आदि कुछ भी नहीं है, परंतु भक्तों में ठग भी बहुत होते हैं। बाबा तो इन बातों का अनुभवी है, ये आत्मा इस शरीर द्वारा ही धंधा दोरी करती है, तो इस समय इस जन्म का सभी कुछ स्थिति में आता है, तीन चार वर्ष से लेकर के अपनी जीवन कहानी मनुष्य को जरूर याद रहनी चाहिए। कई तो भूल जाते, दस बारह वर्ष की आप बात भी नहीं बता सकते, नहीं तो बुद्धि कहती है चार वर्ष से लेकर के सारी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। जन्म जन्मांतर का तो नाम रूप कुछ भी याद नहीं रह सकता, एक जन्म का बता सकते हैं, फोटो आदि भी रख लेते, दूसरा जन्म लिया तो पता थोड़े पड़ता है, शरीर तो दूसरा मिल जाता है, और आत्मा तो देखने में नहीं आती, हरेक आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप से पाठ बजाती रहती है, नाम रूप सब बदल जाता है, तो बुद्धि में है कैसे क्षण छोड़ दूसरा लेते हैं, चौरासी जन्म चौरासी नाम चौरासी बाप बनते हैं, अंत में घटनाओं के नाम संबंध हो जाता है, कमोपधान संबंध हो जाते हैं, तो कितना भी विचार फैल जाता है। इस समय जितना संबंध होता है कलयुग अंत में, उतना और कभी किसी जन्म में नहीं होता, इस समय देखो इसको आठ बच्चे होंगे, वो आठ भाई बहन। कलयुग इन संबंधों की बहुत वृद्धि होगी। तो जितने जितने संबंध बढ़ते जाते हैं उतना उतना बुद्धि का बंधन बढ़ता जाता है। उनको बंधन ही समझना चाहिए। कितने भाई बहन हो जाते हैं, फिर वह शादी करें, बच्चा पैदा करें, इस समय सबसे जास्ती संबंध हो गए। चाचे काके मामे जितने जास्ती बच्चे उतने ही जास्ती संबंध। एक ही बार में पांच पांच बच्चे पैदा हो गए। अखबार में पढ़ा था पांच बच्चे इकट्ठे जन्म लिए और पांचों ही तंदुरुस्त पैदा हुए। हिसाब करो कितना संबंध बढ़ता जाएगा। बहुत इससे ढेर संबंध बनते जाते। इस समय है तुम्हारा सबसे छोटा संबंध। इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में है। अगर पुरुषोत्तम संगम युग में है तो है तुम्हारा सबसे छोटा संबंध। और वहां से कोई बुद्धि का कनेक्शन न रहे। क्या क्या संबंध? एक शिव बाबा दूसरा और आपस में भाई। इतना छोटा संबंध और कोई युग में होता नहीं। सिर्फ एक बात से संबंध है, दूसरा कोई से भी तुम्हारा संबंध नहीं है सिवाय एक बात के। एक से ही संबंध है सचू, फिर इससे जास्ती होता है। धीरे जैसा जन्म तो तुम्हारा अभी संगम युग में है। सचू में तो सोने जैसा कहा जाता है। हाईएस्ट बाप बच्चों को हाईएस्ट बनाए देते हैं। बच्चों को एडाप्ट करते हैं, जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए। वो तो और कोई युग में होता नहीं, तो इसी युग में है। 19 अप्रैल की वाणी का दूसरा तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह है सबसे ऊंचे ऊंच बाप का वर्षा। और कोई युग में इतना ऊंच वर्षा नहीं मिलता है। तुम ब्राह्मण कुल से ऊंच और कोई युग हो और कोई कुल होता भी नहीं है। देवताओं के कुल से भी ये ब्राह्मण कुल ऊंच है और सभी ब्राह्मणों का योग एक ही बाप के साथ। वास्तव में तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मा कुमार तुम्हारी या भाई बहन का संबंध भी तोड़ देना है। आत्मा आत्मा भाई भाई संबंध आखिरी में एक बाप से ही बन गए। ये नई बात है। पवित्र होकर के वापस भी जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत ही रौनक में आ जाते। तो सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग यही रावण पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना हो जाता है। जैसे कि सतयुग से भेंट रखते हैं। कल कलकत्ते से समाचार आया था। बच्ची ने पूछा अभी स्वर्ग में हो या नरक में हो? तो चार पांच ने बोल दिया कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। देखो बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हम तो नरक में हैं। तो समझाना पड़ता है। अगर नरक में हो तब ही तो स्वर्गवासी बनना चाहते हो। स्वर्ग कौन स्थापन करता है? तो बहुत मीठी मीठी बातें हैं तुम नोट भी करते हो। पर वो तो काफी में ही नोट रह जाता है, उस पर विचार सागर मंथन भी करना चाहिए, समय पर याद आना चाहिए। मुख्य बात है अभी पतित से पावन कैसे बने, पावन बनाने वाला पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ही है। क्यों? एक ही क्यों है पावन बनाने वाला? क्योंकि और तो सब पतित बनते हैं, और जो भी आत्माएं हैं वो सब स्वयं ही पतित बन जाती हैं, संग के रंग में आते आते। एक ही परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर ऐसा है जो अनेकों के संबंध में आता है फिर भी पतित नहीं बनता। वह बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मुझे एक को पहचानो और माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद से कोई तो आमदनी होगी ना, और याद की रसम भी अभी से निकली, बाप की याद से तुम कितने ऊंचे स्वच्छ बन जाते हो। जो मेहनत करेंगे उतना अच्छा पद पाएंगे। कोई बाबा से पूछ भी सकते हैं, कहीं पूछते हैं बाबा हमारी बच्ची की दिल लगी है अभी हम क्या करें, वो चाहती है हम लव मैरिज कर लें। बाप कहते हैं ऐसा है तो फिर तुमको खर्चा आदि करने की दरकार नहीं है, क्या है क्या नियम कानून बताया ईश्वरी? अगर बच्ची कहती है कि हमारी दिल लग गई किसी के साथ, लव मैरिज करनी है, तो एक भी पैसा बच्ची को देना ही नहीं, तो वो कुछ भी खर्चा करने की दरकार नहीं, उनका तो लव मैरिज है, तुम क्यों खर्चा करती हो? तो कोई शादी में एक साड़ी भी दे देते हैं ना, एक साड़ी दे देते हैं शादी हो जाती है। अब हो जाने आपस में इस हालत में, किस हालत में लव हो जाता है, इस हालत में उनकी कोई भी दवाई नहीं, उनको कितना भी समझाओ उनकी दिल टूटेगी नहीं, इससे छूटना बड़ा ही मुश्किल है। इस समय तो यहां संगम युग में बाप तोड़ने वाला बहुत तीखा है। क्या तीखा है? इतना तीखा है सारी दुनिया का उद्योग तोड़ करके सब आत्माओं को अपने साथ अंदर अपने साथ ले जाते, फिर भी अभी कोई सामने आते हैं तो उनको राय दी जाती है, फिर झगड़े भी घर में बहुत उमड़ते हैं, हर हालत में झगड़ा होता है, विकार के लिए, धन के लिए, जमींदारी के लिए झगड़ा ही झगड़ा। कोई मर जाते हैं लिखा पढ़ी करके नहीं जाते हैं तो भी आपस में झगड़ा उमड़ता है, अगर स्त्री के नाम पर होगा और बच्चा जीता होगा तो भी मामला बढ़ जाता है, मारने की भी युक्ति निकाल लेते। यहां तो तुम बच्चों का आपस में कोई संबंध ही नहीं, कोई झगड़े डटे की बात ही ऐसा होता है। अगर बाप के बच्चे बने फिर कोई झगड़े डटे की बात होनी नहीं चाहिए, सिर्फ एक बाप दूसरा तो कोई, बाप तो बेद का मालिक है, बेद का वर्षा देगा, बेहद के बच्चों को सेटिस्फाई कर देते हैं। बाप को बड़ी सहज है, इस तरफ है स्वर्ग और उस तरफ है नरक। स्वर्गवासी अच्छे या नरकवासी अच्छे, कोई तो कह देते हैं नरकवासी या स्वर्गवासी, इन बातों में हमारा क्या जाता है। जो सयाने समझू होंगे वो कहेंगे स्वर्गवासी ही अच्छे हैं, कई स्वर्ग नरक को जानते ही नहीं, क्योंकि बाप कोई नहीं जानते जो नरक को स्वर्ग बनाने वाला है। बाप की गोद से निकल करके फिर माया की गोद में चले जाते, जब माया की गोद में चले जाते हैं तो उनका ज्ञान ही खलास हो जाता है, जो ज्ञान के कोई पॉइंट बुद्धि में चल न सके। वंडरफुल बाप, सारा ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है, बाप भी वंडरफुल, ज्ञान भी वंडरफुल, बच्चे भी वंडरफुल। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि उस वंडर में लगी रहे। ये रावण तो वंडर नहीं है, रात दिन का फर्क है, शास्त्रों ने तो क्या क्या लिखी है, लिखा है काली दह से निकला, जब सर्प ने डसा काला हो गया। अभी तो अच्छी रीति समझा सकते हो, कहां की बात है, काली देह कौन सी है, ऐसी दहकती हुई नदी है विकारों की, विषय वैतरण्य नदी, जिसमें गोटा खाया और नीचे गिरते ही चले गए, गिरते ही चले गए, गिरते ही चले गए, और गिरते गिरते एकदम काले लुप्पट हो गए। पहले काले फिर गोरे, तो शास्त्रों में दिखाया है ना, काली देश से निकला, सर्प ने डसा, काला हो गया। अभी इन बातों को तुम अच्छी रीति समझा सकते, इसकी कहानी है, ये कृष्ण की कहानी है, कृष्ण के छोटे चित्र में लिखत बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और ये चित्र भी तुमने पढ़े हुए हैं, ये तो बच्चे जानते हैं, बहुत ही चित्र छपाए थे, कौन से नरक की गोले को लात मार रहा है और स्वर्ग की गोले को बुद्ध रूपी हथेली में ला रहा है। बच्चे कहते थे बाबा इतने 10,000 चित्र क्यों छपाते हो, बाबा कहते हैं बच्चों की वृद्धि होती जाती है, भाषाएं भी वृद्धि को पाती रहती हैं, आगे चल करके हो सकता है 20,000 से भी ज्यादा छपानी पड़े, बाबा तो बच्चों के लिए छपाते हैं। कृष्ण के चित्र को उठाकर कोई पढ़े तो भी रिफ्रेश हो गया। 84 जन्मों की कहानी है, जैसे कृष्ण की वैसे तुम्हारी, स्वर्ग में तो तुम भी जाते हो, त्रेता में भी आते हो, ऐसे नहीं त्रेता में जो राजा होते हैं वो त्रेता में ही आवे, नहीं सतयुग के राजाएं त्रेता में भी आते, सतयुग में नारायण बनेंगे तो त्रेता में भी राम बनेंगे। तो यहाँ की पढ़ाई से सब क्लियर हो जाए, पढ़े आगे अनपढ़े जो फेल होते हैं उनको बड़ी डोनी पड़ेगी। तो ये ड्रामा का राज बाप ही जान सकते हैं और बता सकते हैं। अभी तुम समझते हो तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सभी नरकवासी हैं, सब वैश्यालय के रहने वाले हैं, पुरुषोत्तम संगम भी बने, अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, बाहर में रहने में और यहाँ 7 रोज रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है, संघ का रंग लगता है ना। हंसों के संघ से निकलकर बगुलों के संघ में चले जाते हैं, और बगुले तो बहुत बिगाड़ने वाले भी होते हैं। समाचार तो सभी बाबा के पास आते रहते हैं ना, उनको सब पहला सबकी वाणी करती सब। बहुत बच्चे मुरली की भी परवाह नहीं करते, बाप समझाते हैं मुरली न पढ़ने की गफलत नहीं करनी चाहिए, मुरली तो रोज सुननी चाहिए, तुमको तो ऐसा खुशबूदार गुण बनना है, रैयत का बुद्धियोग लग्न अपने बादशाह के रानी से होगा ना, राजा से होगा ना। यहाँ भी ऐसे होता है, मीठे मीठे बच्चों को वो समझाते रहते हैं, सिर्फ एक ही बात तुम्हारे लिए काफी है, याद की यात्रा, यहाँ तुम संघ तो ब्राह्मणों का ही, कहाँ तो ऊंचे थे ऊंचे और कहाँ वो नीच थे नीच। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा बगुलों के झुंड में हम हंस क्या करेंगे, बाबा कहते हैं 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में मस्त रह सकता है। कैसे होगा अगर एक बाप दूसरा न कोई ऐसी स्थिति बना ले, नहीं तो बगुले कांटे ही लगाते रहते, कितनी मेहनत करनी पड़ती है निकालने के लिए, बाप किसी में चलने से पद भी ऊंच मिलेगा। तो बाप कहते हैं हंस ऊपर की रहो, बगुलों के संग में बगुला मत बन जाओ, नहीं तो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भारती हो जाएंगे, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अंदर में नॉलेज हो तो सर में भी आ जाएंगे, पर कितना फर्क पड़ जाता है, बहुत कड़ी खावेगी, ये तो होता ही है। आइनरी राजा ये तो 100% जात की सजा मिल जाती है। बाप कहते हैं तुम इन मत पर नहीं चल, पति तो बने तो 100 गुना दंड 100 गुना दंड तुमको पड़ जाता है, क्योंकि मेरी निंदा कराते हो ना। बगुलों तरफ गए तो खुश हो जाते, बगुले तो और ही खुश हो जाते, तो ऐसे में फिर दंड बहुत पड़ जाता है, चांडाल का जन्म हो जाता है। वो भी तो चाहिए, राजा की स्थापन हो रही है तो प्रजा भी चाहिए, दास दासियां भी चाहिए, झंडा भी चाहिए, राज्याधिकारी भी चाहिए, राजा की स्थापन हो रही है ना। ये बातें भी बच्चे भूल जाते हैं, ये बातें भी याद रहे तो भी उस पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, नहीं करते हैं तो समझा जाता है इन्होंने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिए। भक्ति मार्ग में ऐसे करते हैं ना, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल लेते हैं। बाप से योगी नहीं, योग सारा बगुलों के साथ चला जाता है। तो यहाँ रहते भी बुद्धियोग बाल बच्चों की तरफ चला जाता है। बाप कहते हैं अभी सभी कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है बहरा, इसमें भी परसेंटेज है, कहाँ खाया खाया रात चली जाती है। लव मैरिज भी करते हैं तो बहुत लव हो जाता है, बुद्धि कितनी लटक पड़ती है। बाप रोज समझाते रहते हैं इस पुरानी दुनिया में रहते हुए इसको भूल जाओ, इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो ये सभी खत्म हो जाने, बुद्धि का योग नई दुनिया में लगाओ, वेद की नई दुनिया के वेद के संबंधों से बुद्धि योग रखना है, तुमको ये महसूस भी वंडरफुल मिला है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, आप जब बाप आवेंगे तो हम आपके सिवाय और किसी को याद नहीं करेंगे, अभी देखो मैं आया हुआ हूँ, तो मुझे ऐसे कहते थे ना बुद्धिमान, तो अभी और तरफ से बुद्धियों को हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा तो जबरदस्ती है क्या? नहीं हटाते तो भी ऐसी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आवेंगी, क्योंकि हट्टी तो एक ही है, जावेंगे कहां? फिर आना पड़ेगा, दुनिया से बुद्धियों तोड़ना ही पड़ेगा। ये सभी जैसे मिट्टी में मिल जावे, तुम्हारे ऐसा मिट्टी के साथ अभी बुद्धियों हो गया, मेरे साथ बुद्धियों होगा तो तुम मालिक बन जाते। बाप कितना समझदार बनाते हैं, मनुष्य थोड़े जानते हैं कि भक्ति क्या है और क्या क्या है। अभी तुमको ज्ञान मिला है, भक्ति का भी समझते हो, अभी तुमको फीलिंग आती है भक्ति मार्ग में कितना दुख है, फिर भी मनुष्य भक्ति ही करते रहते हैं, अपन को बहुत सुखी समझते हैं, फिर कहते हैं भगवान आकर हमको भक्ति का फल देंगे। अरे किसको देंगे, कैसे देंगे, वो कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम समझते हो भक्ति का फल देने बाप आया हुआ है, विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलना है, वो बाप जो कुछ डायरेक्शन देना देते हैं उस डायरेक्शन पर चलना पड़ेगा। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऊंच मत, और मिलती तो सभी को है, फिर कोई चल सकते हैं कोई नहीं चल सकते। इसकी भाषा ही स्थापन होती है, तो मैं भी समझते हो हम क्या थे, अभी हम क्या थे, माया एकदम नीचे गिराए देती है। ये तो है जैसे मुर्दों की दुनिया है, बाप खुद कहते हैं ये घमंडियों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तो तुम जो सुनते थे सभी सात सत्य कहते रहते, सात्य वचन महाराज। अब तुम कहा सत्संग आदमी को सुनेंगे, तो सुनते रहेंगे और अंदर ही अंदर हंसते रहेंगे, ये क्या सुनाते, कितनी नॉनसेंस झूठ बातें बोलते रहते, झूठ ही सुनाते, सच तो एक बाप ही सुनाते। तो जैसे कि बाप को याद करना ये बहुत सहज हो जाता है, यहाँ कोई बाहर वाला बैठा होगा तो उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहे, पता नहीं क्या क्या बातें सुनाते रहते। सारी दुनिया कहती है आत्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी, और ये कहते हैं नहीं वो तो एक व्यापी है। कांड उनकी ना ना करती रही, तुम्हारे अंदर से तो हाँ हाँ निकलती रही, इसलिए नए को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता। नया आकर के बैठ गया क्या हाँ? यहाँ तो कोई नया नहीं आ गया है, बच्ची नहीं किया अभी कोर्स भी नहीं किया, तो समझ में नहीं आएगी है। धीरे धीरे तो धीरे धीरे चलने वाले संस्कार पड़ जाए, कोई स्टूडेंट तीखे तीखे जाते हैं और कोई स्टूडेंट धीमी चाल से चलते हैं। यहाँ तो 84 जन्मों का फाउंडेशन पड़ रहा है, भगवान बाप आते हैं तो अनेक जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है, कोई भी संस्कार टीके जाते हैं, कोई मिडल हो जाते हैं, तो जो स्कूल का कायदा कानून है उसके अनुसार तो नए को अलाउ नहीं किया जाता है। अच्छा मीठे मीठे स्कूल के बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार तो कौन भी पुरानी बच्चों को पुरानी बात की।